ಜಾಯಾಧಾನಕ್ಕಿಯೇ ಕಮ್ಮ ಕಲಂಕಡಹೇ ನಿಶ್ಚ ನಿರಂಜನ ನಾನಮೌ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮನವೇ.
ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭಾವಿಕ ಭಾವಕ್ಕೂ ಛೋಡಾ ನೀ ಜಾತಾ ಕಿಂತು ವೈಭಾವಿಕ ಭಾವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸ್ರೋತ್ ಪುಣ್ಯ ಬಾಪ್ ಇನ್ಕಿ ಓದ್ ಅಪನಿ ಉಪಾಧಿತಾ ನ ಬನಾ ಕರ್ಕೆ ಯೇ ಅಪನಿ ಸ್ವಭಾವ ನಹಿ ಐಸಾ ಭಾವ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಯೆ ಛೋಡೇ ಭಿ ನಹಿ ಜಾತೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಕರ್ಮೋ ಕಾ ಬಂಧನ್ ಔರ್ ಕರ್ಮೋ ಕಾ ಫಲ ದೋನೋ ಹೀ ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ ಪರಾರ್ಥ ಹೈ. ಹಮ್ ಯೇ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕೇವಲ ಯೇ ಅಪನೆ ನಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಭಾವ ನಹಿ ರಖನಾ ಹೀ ಉನ್ಕೊ ಛೋಡ್ನಾ ಹೈ. ಛೋಡ್ನೆ ಕಾ ಅರ್ಥ ಯೇ ನಹಿ ಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಠ ಪೀಠೆ ದರ್ಶನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೋಯಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ. ಛೋಡ್ನೆ ಕಾ ಅರ್ಥ ಅನಾಸ್ಥಾ ಭಾವ ಕರ್ಮ ಪರ್ವತೆ ಶಾಂತಿ ದುಃಖೈರಂತರಿತೋದಯ ಪಾಪ ವಿಜೆ ಸುಖೆ ಆಸ್ತಾ ನೈ ನಾಸ್ತಾ ಅನಾಸ್ತಾ. ये निकाम के सत्संग के लिए स्वामी समर्थभद्र महाराज ने अनास्था का प्रयोग किया है. आस्था नहीं अनास्था भाव होना ही होना है. ग्रहणी नहीं करेंगे उसके प्रति आस्था ही नहीं रखेंगे तो अपने आप ही व्यर्थ हो जाए. उसी प्रकार पुण्य और पाप के बारे में भी अपनी धारणा बनाना है. पुण्यो वे पापो वे कादो न हो ಆತ್ಮ ನ ಭವತಿ. किससे हम डरे? डरने की क्यों बात है? कोई कोई कर्म से डरे, कर्म अपना है ही नहीं और चाहे ही नहीं, हम शरीर हमारा है ही नहीं। यहाँ पर स्वभाव की ओर दृष्टिपात हो जाता, वहां पर ये सारे सारे ऐसे स्थिति नजर आने लग जाते हैं जिनका हमारे साथ कोई भी सामान्य संबंध। भगवान की मूर्ति देखने से इतना यह रहस्य खुल जाता है, दुनिया की कोई भी चीज उनके सामने रख दो वो प्रवास नहीं करते और न ही उनको ग्रहण करते हैं और न कोई भी किसी से प्रेरित करते हैं ग्रहण कर रहे हो इत्यादि या मना करते हो, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी जाकर के करो, कहो, करो, बैठो, कुछ भी करो, लेकिन वहां पर कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं। इतनी गाढ़ श्रद्धा की परिणति है, खूब परमाणु गाढ़। कल्पकाल में कल्पकालीन यदि मान लीजिए प्रलय भी हो जाता है तो भी इस ज्ञान में कुछ परिवर्तन नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता। ज्ञान स्थायी बन गया, स्थिर बन गया और अकम अपने ज्ञान के माध्यम से होने वाले वैभाव परिणति से हम प्रभावित होते हैं। इसी का कारण, यही एकमात्र कारण है कि अगला संसार उसका बढ़ता चला है और उस ज्ञान में पूरा का पूरा संसार का दृश्य झलक रहा है, फिर भी उसको नहीं चाहते, देखने की इच्छा नहीं करते। तब वह एक प्रकार से संकोचित जायक पिंड की अनुभूति में प्रारंभ हो जाती है और कब तक रहती है? आचार्य कहते हैं अब कब तक की बात मत करो, अब कोई सीमा नहीं, अब कोई शर्त नहीं, अब कोई किसी प्रकार के अस्तित्व वाली बात नहीं है। चढ़ाला में आता है ना, विद्वान लोक अलोक उन पर जाए प्रतिबिंब सहे रहिए अनंतानंत का यथा तथा जो पर है। जब से उन्होंने शिव मैंने मुक्ति रूपी लक्ष्मी के साथ ब्याह रचा, तब से लेकर के रहिए अनंतानंद का यथा तथा परिणय। जैसे शादी हो गई वैसे को वैसे अनंत काल तक वह रहे, इसी प्रकार के संयोग और वियोग के वाली बात यही है। रही अनंतानंद काल नहीं सुनते, कुछ एक दिन के लिए दो दिन के लिए नहीं, जब से यह मुक्ति दशा उन्हें प्राप्त है तब से लेकर के अनंतानंद काल तक के यह जो का जो बना रहे। लोग अलोक गुण पर जाए बस अपने में तीन लोग लगने लगा। ये कब तक रहेगा? तो कहते हैं कि जब से हुआ अनंत काल के लिए पार अपरिजान उसका अब अवसान नहीं। इतनी अद्भुत माया है। अब ये सोचो भविष्य में कभी भी उसे आवागमन के चक्कर में नहीं आना है, कब तक बैठा रहेगा? कहते बैठा ही रहेगा, कब तक की बात नहीं। अब एकाध बार लौट करके नहीं, लौटने की बात भी नहीं होगी। कितने काल के लिए? कितना काल मत को वहां पर सीमा नहीं रही। अब इस प्रकार पहले भी कोई गए हैं तो जब से आप पूछो तब से, और उससे भी पहले ऐसे गए। घाटा तो हम लोगों को लग ही गया, लगता तो ऐसे ही है। महावीर भगवान की अपेक्षा हम लोगों को तो घाटा है, कम से कम 2500 वर्ष का। उससे पहले ऋषभनाथ भगवान की अपेक्षा महावीर भगवान को घाटा, ऋषभनाथ भगवान की अपेक्षा और भी पहले चले जाए तो ऋषभनाथ भगवान को घाटा, ये निश्चित बात है। कि हम तो अब मुक्ति पाएंगे उस अनुभूति के अपेक्षा से अनुपात महावीर भगवान का ज्यादा रहेगा, चाहे जरूरत अनुपात यही तो, यही तो तुलना करना है कि हमारे जो अनुभूति की मात्रा रहेगी वह कम से कम थी, मान लीजिए कुछ ही बहु के उपरांत तो ढाई तीन हजार वर्ष कम पड़ेगा, ऋषभनाथ भवन की अपेक्षा हम लोगों के लिए बहुत कम पड़ेगा। यद्यपि ये भी अनंत है, वो भी अनंत है, निश्चित बात है, लेकिन फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल गति दिव्य तीर्थ चारित्र बुद्ध बोधन ज्ञानावधार संख्या बहुत बड़ा है, ये 12 भंग के माध्यम से अपेक्षित करते हैं तो अनुपात हमारा कम है। अब किसी प्रकार मिटेगा नहीं ये अनंत है, कम अधिक की अपेक्षा इतना तो अधिक कम हुआ है, वही तो कहा द्रव्य क्षेत्र काल अनुभूति, अनुभूति की जो मात्रा काल के अपेक्षा जब आरोपित कर ली जाएगी तो 2500 वर्ष कम आएगी ना, इसी का नाम तो है क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी आपको मिली, क्वालिटी तो वही है, इसी बात काल की अपेक्षा रखेंगे हम पड़े हैं उन पर, हम अपने हिसाब से करेंगे सबके लिए ऐसा ही है, ऋषभनाथ भगवान से पूछो तो वो भी कहेंगे कि हमें भी अनुपात से कम, उनसे पहले और किसी को पूछो तो हमारे लिए भी कम मिला, आपस में करेंगे तो निश्चित रूप से कठिन बढ़न मिलेगा, लेकिन एक नहीं एक नहीं देर के लिए सवा देर वाली बात हमेशा हमेशा मिलती चली जाएगी, अनंत काल अतीत में भी चली जाती तो, और आगे अनंत काल तक नहीं भविष्य में भी राम ले दो वहां पर भी विकल्प नहीं होते, वो तो निर्विकल्प है, लेकिन जो यहाँ पर बैठे रहेंगे वो तो 12 प्रकार के भंग घटाएंगे ना, हाँ तो जो कोई भी यहाँ पर रहेंगे वो तो जब तक नहीं जाएंगे तब तक लिए इतने तो साध्याय वगैरह करेंगे, उसमें तो यही तो घटी है घटित करेंगे, कभी भी नहीं घटित, ये ध्यान रखें कहा था कि आप मान लीजिए मुक्त होंगे, आप मुक्त होने के उपरांत अनंत अनंत तीर्थंकर आपके बाद होंगे, देखो आपकी सीनियरिटी कितनी बड़ी है, आप बड़े माने जाएंगे और आपके बाद अनंत तीर्थंकरों का नंबर लगने वाला, घबराओ नहीं, हम बहुत पीछे रह गए ऐसा नहीं कहना, कभी भी आप पूछ लो जब कभी हम बहुत पीछे रह गए हैं बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं ऐसी बात नहीं है, कतार कतार लाइन के लाइन है, जो आपके बाद अनंत सिद्ध परमेश बनेंगे उनके तीर्थंकर भी अनंत रहेंगे, देखो कितना सौभाग्य है उन लोगों का, वो लोग जो है पीछे रह गए, जल्दी करो आप देखो बात ऐसी है कि मत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान का जो विषय है उसको कैसे आप करना चाहोगे, इससे तो इससे तो ऐसा लगता है कि फिलहाल की कोई बात नहीं है, हमारे बाद भी अनंत सिद्ध परमेश बनेंगे और तीर्थंकर बनने वाले हैं, जो जगत के उद्धार में माने जाते हैं वो भी हमारे बाद आएंगे, ऐसा हमारा सौभाग्य है, प्रत्येक का सौभाग्य ऐसा नहीं है जो प्रत्येक का है, हमारा ही नहीं तुम्हारा भी, एक छोटा बालक है और कहता है कि हमारे कम नहीं बेटा तुम्हारे पीछे से बहुत बड़े बड़े विभूति आने वाले हैं पहले हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आकुलता किसी बात की नहीं करना चाहिए, खुल गया निश्चित बात है खुल गया, अब कोई किसी बात की आकुलता करने ही नहीं थी, करना है वो आकर्षता है जिससे पीछे ये करना है आकर्षता क्या उसमें वर्तमान तो एक जैसा था। अच्छा वो तो ताता टूटता नहीं हो, इसीलिए तो फिर वर्तमान वर्तमान ही रह जाता। इसी प्रलोभन के कारण महाराज आज तक यहां पर गाड़ी रुकी हुई है, सब जल्दी कर लो। निराकुलता आ गई, यही निराकुलता होने का उपाय तो यही है। मुक्त्वा किं चेतन भावमिति, क्या छोड़ करके चेतन आत्मा के भाव को छोड़ करके, तथा व्यवहार नहीं आत्मन काशात अभिन्ना सुतनिशेन भिन्ना हे भूतान पुण्य पापादि धर्मा धर्मा मिथ्यात्मरागादि परिणत बहिरात्मा स्वात्मनि योजेति ताने पुण्य पापादि समस्त। बहिरात्मा क्या करता है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आत्मा से जो अभिन्न है किंतु शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से भिन्न है और हेभूत है, ऐसे पुण्य पाप धर्म अधर्म मिथ्या रागादि भाव परिणत होता हुआ ये आत्मा बहिरात्मा अपने आत्मा में नियोजित कर लेता है इस भावों को। दान योग पुण्य पापादि समस्त संकल्प विकल्प परिहार भावना रूपे स्वशुद्धा द्रव्य सम्यक उन्हीं पाप पुण्यादि समस्त संकल्प विकल्प परिहार रूप जो भावना है उस भावना में शुद्धात्म द्रव्य में सम्यक दान ज्ञान अनुचरण रूप जो अभेद रत्न त्रयात्मक है परम समाधि उसमें जब स्थित होता है तो अंतरात्मा उसको छोड़ देता है, उसमें आत्मा अपने आत्मा में उसको नियोजित नहीं करता। तो शुद्धात्मा चकाशा पृथक जाना चाहिए। देखो निरंजन से तो क्या और किसमें है ऐसा भाव आया था, हे भगवान मेरे भीतर उद्घाटित होने वाला जो भावी केवल ज्ञान है उसमें अनंत भावी और भविष्यत संबंधी केवल ज्ञान तैर रहे हैं ऐसी आपकी वाणी मुझे समझा रही है। क्या हुआ, जिनवाणी की महिमा बताते हुए भगवान से कहा, हे भगवान आपकी वाणी ऐसी कह रही है कि मेरे भीतर जो भविष्य में होने वाला केवल ज्ञान है उसमें आप भी तैर रहे हैं, आप जैसे अनंत केवली उसमें तैर रहे हैं ऐसे आपकी जिनवाणी आपकी वाणी मुझे समझा रही है। बेटा तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति है जो दादा परदादा वगैरह सारे सारे तैर रहे हैं, जो होने वाले हैं वो भी तैर रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप होता है जिसमें अनंत केवल ज्ञान भी झलकते हैं। क्या होगा, तैर रहे हैं मतलब झलक रहे हैं। नहीं ये भी वो भगवान ने देखा, भगवान ने देखा तुम्हारी केवल ज्ञान में वो भी झलकी। उसी का नाम तो ज्ञान का विषय बन रहा है, क्या नहीं ज्ञान का विषय बन, उनके उनके लिए लक्ष्य थोड़ी है। नहीं तो ना हमारी केवल ज्ञान में और वो अब केवल ज्ञान के बारे में जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, हाँ वो अपने आप के केवल ज्ञान के द्वारा कैसे जान रहे हैं कि जो भविष्य में होने वाले जो केवली हैं उनके ज्ञान में भी ये अब कौन दर्पण है कौन अर्पण है ये याद करना मुश्किल है। ये ज्ञान की विषय विशेषता मानी गई, कौन किसमें है कौन किसका है, दर्पण के सामने दर्पण रखा बीच में मान लीजिए मूर्ति रखी, क्या हुआ इसका बिंब इसमें है कि इसका बिंब इसमें है कोई पता नहीं ले सकता, इधर देखो तो इधर का बिंब आ जाता है इधर देखो तो इसका इधर आ जाता है। अब दिखती चली जाइए तो दर्पण के कारण और एक मूर्ति है, कितनी मूर्ति है ये पता ही नहीं लगती, दो में ये हो रहा है तो हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनंत केवलियों का बिंब कैसा पड़ता होगा एक केवल ज्ञान में चकाचक चकाच है। किसका ग्रंथ किसमें है, तो ये केवल ज्ञान नहीं है, अनंत केवल ज्ञान, किस केवल ज्ञान में कौन सा केवल ज्ञान झलक रहा है, यही मतलब मुश्किल है। बिल्कुल झलकन झलकन है, थोड़े से अनुमान तो कर लो कैसा होता होगा। सभी भक्त को हो ये कि केवल ज्ञान में सारे सारे वो गर्वित हो गए, उसी प्रकार सभी केवल ये भगवान में सब केवल ज्ञान चले हुए हैं, सबसे प्रतिष्ठित है, कौन किसका ग्रंथ किसका है ये कुछ पता नहीं पड़ता है। एक तो है विप है क्या ओरिजिनल है, ये बस मुश्किल हो जाता है, ओरिजिनल क्या है मुश्किल हो जाता, देखो ही नहीं पूरा का पूरा छलकता रहता, कितना स्थिति इस तरह को ये संसारी प्राणी वैभाविक भावों से प्रेरित होकर के नहीं समझ पा रहा है। दिनवाणी को पढ़ो तो ये याद होता है कि कैसा अद्भुत परिणाम है इसका, सब एक दूसरे में प्रतिबिंबित है। जिस समय योग का अभाव हो जाता है उसी समय होना चाहिए। हाँ, समय का मतलब यह है कि नाम कर्म का जो ही अभाव हो गया, क्योंकि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी के स्थान पर ही यह बात आ गई कि श्वासोच्छ्वास का भी अवरोध हो जाता है। 13वें गुण स्थान के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी स्थान पर ही, क्योंकि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नाम जो तृतीय शुक्ल ध्यान है वह काय योग का सूक्ष्मीकरण है, उससे पहले स्थूल मन योग को सूक्ष्म बनाया जाता, स्थूल वचन योग को सूक्ष्म बनाया जाता, स्थूल श्वास क्रिया को सूक्ष्म बनाया जाता, स्थूल काय योग को सूक्ष्म बनाया जाता, सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म मन योग को समाप्त कर दिया जाता, सूक्ष्म मनोयोगम निरुम्भते तदो अंतम मुहूर्तेन, सूक्ष्म वचन योगम निरुम्भते तदो बीच में तदो अंतम मुहूर्तेन, सूक्ष्म सत्योच्छासम निरुम्भते तदो ईदानि करणानि करोति, उस बाद में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि से आगे की कुछ कार्य को करना प्रारंभ कर देता है, उसी का नाम ध्यान है। ये क्रिया जब होती है तो वह श्वासोच्छ्वास का निरोध वहां पर हो जाता है, वहीं पर योगातीत हो जाता है, और योगातीत हो जाता है तो वहां पर वह मन में अपने शरीर नाम कर्म का उदय का अभाव हो गया, उदय का अभाव हो गया, लेकिन अभी प्रदेशों का जो शरीर में है प्रदेश उनका घटन बढ़न कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। यदि होता है ऐसा मान लिया जाए तो स्पंदन और ये क्रिया दो मानी जाएगी, एक ही मानी जाएगी, स्पंदन नहीं होता, स्पंदन नहीं होता, स्पंदन नहीं होता, इसलिए वह न्यून शरीर वाला हो गया क्या ऐसा कहीं जो देख नहीं मिलता। इतना अवश्य है चर्म देह दोष था कि चूना, ये बात सिद्ध अवस्था के वर्णन के समय पर मिलता, भाव कर्म भी अभी नहीं गया है ये हमारा कहना है। राग द्वेष आदि भले वार कर्म चले गए, योगाधिक भाव कर्म तो चले गए, लेकिन अभी वहां पर भाव कर्म जो ध्यानात्मक है उसको तो मानना ही पड़ेगा। मानते हैं, मानते हैं हम कृत्रिम कर्म प्रमुख मोक्ष कहा पूरा कर्म, तो कर्म करने क्रिया नहीं, कायवान मन कर्म, और ध्यान भी एक कर्म है क्या नहीं है? ध्यान जब तक रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, ध्यान के बिना भी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ध्यान अपने आप में वह वैभाविक परिणाम है, उस उसका अभाव होना अनिवार्य है। और वह इसलिए है अभाव अभी प्राप्त नहीं हो सकता जबकि अभी कर्म को काटना है, कर्म काटने के पीछे वह साधन है, इसलिए वह साधन नहीं जा सकता। इसके उपरांत भी निर्णय के रूप में अभी हम इसके बारे में विशेष नहीं कह पाते किंतु ना यह कहां पर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है, उदाहरण से देते हैं हम गुब्बारे का, गुब्बारे में हवा भरा है, हवा जब भरी है तो निकलेगी, वह क्यों हो जाएगी, बुझे जाएगा तो क्या होगा, सब किंचुना हो गया। ये उदाहरण है, खिलौने जैसा लगता है लेकिन इसमें शुद्धत्व का प्रतीक है, नहीं तो वो मैंने बताया है तो खतरे तो सुनो, हम सुनो तो सुनो, वह यूं फैल गया है, फैल गया है तो उसको कितना बड़ा हो गया, वह मान लीजिए वह कि एक फीट क्षेत्रफल में है, अब वह यूं खिसक गया तो खतरे तो सुनो, हम सुनो तो सुनो, वह यूं फैल गया है, फैल गया है तो उसको कितना बड़ा हो गया, वह मान लीजिए वह एक फीट क्षेत्रफल में है, अब वह यूं खिसक गया, जब गया तो कितना रह गया, पाव भर रह गया, मतलब समझ लिया कि वह जारी कुछ नहीं, अब वह बात ही नहीं है, वो तो गुब्बारे को हो तो जूता है, वो बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, भूलने मिले सुनो सुनो, जब हवा डाली जाती है उस समय देख लो गुब्बारा, डालने से पहले की मैं बात देख लू ना, गुब्बारे का खेल तो है, गुब्बारे को तो पहले तो हवा दी थी उसमें, गुब्बारे को खरीद लिए, गुब्बारे को खरीदने के उपरांत पहले कैसा रहता है, बिल्कुल साबुत रहता है, चपटा कितने, अब वो बाद में करेंगे, हम बाद में करेंगे उदाहरण के लिए, तो ये ठीक है, बाद में जो चिंता करना होता उतना कर, हाँ जिसमें पानी भर दिया जाता है वो अलग होते हैं, राम लाडू है, राम लाडू, राम लाडू बोलते हैं, उसको उसमें पानी भर दिया जाता है क्योंकि बार बार लोग उठते हैं इसलिए अलग डालो राम लाडू, और उसमें एक रमण का जो है टुकड़ा बांध दिया जाता है और वो हाथ से बन कर दिया, क्यों फेंकते, क्यों फेंकते ही वह वहां चला जाता है और वो कोई पकड़े तो बात आ जाता है रामलाल, और जब उसमें से पानी निकल गया तो फिर क्या करें, छोटे क्या रहता है तो ओरिजिनल रह जाता है रामलाल, तो क्या हुआ, धारणा तो यही है, पहले तो कह दिया है लेकिन फिर भी अभी निर्णय नहीं कर पाता है क्योंकि लोग भी थोड़े सोच ले समझ ले सकते, उदाहरण यही दिया, क्योंकि साथ का निरोध जो हो जाता है अपने आप में वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति के समय पर हो जाता है, हाँ उसी समय, हाँ वही, हाँ वही उसके उपरांत अंतर मुक्त तो रह जाता है। अब हवा तो निकल गई, इसमें थोड़ी से और हवा जब निकल गई तो फिर भी थोड़ी बहुत, अब गुब्बारे की जो क्रिया अभी थोड़ी थोड़ी होती रहती है वो यूं समझ लो है? पापड़ जो है, पापड़ का विस्तार ज्यादा रहता है पापड़, और जो ही वह अग्नि के ऊपर रख दिया होने लग जाते हैं, उसको पापड़ सिक रही है, पापड़ सिक रही है, सिक रही का मतलब क्या है कि वो अपने फैलाव को जब निकल गई तो फिर भी थोड़ी बहुत, अब गुब्बारे की जो क्रिया अभी थोड़ी थोड़ी होती रहती है वो यूं समझ लो है? पापड़ जो है, पापड़ का विस्तार ज्यादा रहता है पापड़, और जो ही वह अग्नि के ऊपर रख दिया होने लग जाते हैं, तो पापड़ सिक रही है, पापड़ सिक रही है। सिक रही का मतलब क्या है कि वो अपने फैलाव को कम कर रहे हैं। उसी प्रकार मेरे गुण स्थान के अंत में ये पापड़ की बात है, एग्जाम्पल अभी हम ये कह रहे हैं कि सिकुड़न कैसा होता है, तो वह भीतर भीतर में जो विस्तार जो हुआ था वह हवा इत्यादि के कारण विस्तार था। वो बात नहीं कही, तो गुब्बार की बात कर सकते। पापड़ के संकोच के लिए कह रहा हूं मैं, कि पापड़ किस प्रकार संकोच को प्राप्त हो रहा है, तो जो ही उसके ऊपर रखा तो पापड़ सिक रही, देखो पापड़ सिक रही। इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश चौदहवें गुण स्थान में, तेरहवें गुण स्थान में तो पूरे पूरे हम उसकी नाम कर्म की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन ध्यान की जो क्रिया होती है वह थोड़े बहुत, ये भी ध्यान रखना स्पंदन मात्र योग नहीं है, स्पंदन मात्र योग नहीं है, किंतु वह स्पंदन योग है जिसके द्वारा कर्म और नौ कर्म और वर्णों का आश्रय होता है। लेकिन ध्यान के समय पर भी एक अलग प्रकार की स्पंदन क्रिया रहती है, इसको हम अयोग कहते हैं। अयोग का क्या ईशत योग है, ये समझ में इसलिए नहीं आता कि आज तक योग की धारणा आप लोगों ने यह बनाए रखा है कि आश्रव आश्रव हो गए हो, लेकिन क्रिया का नाम योग मान लिया जाए तो वह क्रिया ध्यान की क्रिया मानोगी क्या नहीं, ध्यान की क्रिया चौदह गुण स्थान में मानोगे क्या नहीं, जब स्वभाव तो नहीं मानोगे, स्वभाव तो नहीं, अभी क्रिया हो रही है, वो भी एक कर्म है, वो भी एक भाव है। अब भाव किस कर्म के उद्देश्य है, वो नहीं कर्म के उद्देश्य नहीं है, वह एक प्रकार से आत्मा की ही एक क्रिया है, क्योंकि वह क्रिया भी योग के अंतर्गत है। इसलिए अयोग केवली का अर्थ यह है कर्मों के आश्रम से रहित, या कर्मों के आश्रम के कारण भूत जो योग है उससे रहित। लेकिन सही पूछा जा उसी योग के माध्यम से, योग मैंने ध्यान है अपने आचार्य ने कहा, क्या कहा है, योग का अर्थ ध्यान कहा, योग का अर्थ आश्रव कहा, आश्रव के अभाव तो अयोग है, लेकिन ध्यान के सद्भाव की अपेक्षा से अयोग नहीं है, ईशत योग है। वहां पर उसी का नाम ध्यान है, उस ध्यान को भी मिटाना अनिवार्य है, वह ध्यान निर्जरा के लिए कारण है, निर्जरा पूर्ण हो जाएगी तो वह रह जाए। किसी प्रकार गुब्बा वगैरह में से हवा तो निकल गई, लेकिन फिर भी थोड़ा तो उसका स्वभाव बहुत दिन से हो रहा था, खुला हुआ था, वो निकल जाता। संकोच विस्तार यह नाम कर्म के उदय के साथ जो था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके उपरांत भी आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन जो कि पूरे पूरे कर्म के आश्रम के लिए कारण होता है, ऐसा नहीं, तद्गत जो क्रिया है वह क्रिया तो वहां पर हो रही है, वह सारा का सारा संकोच में ही आना चाहिए, हमारा भाव है। कंद में स्पंदन का अर्थ वहां पर कुछ वैभाविक परिणति विद्यमान है, हाँ वो उसी को कर्म बोलते हैं अपने यहां, उसी को क्रिया का नाम कर्म है, यद क्रिएटे तद कर्म, वह कृषि के द्वारा किया जा रहा, चौदह गुण स्थान टिमुनि महाराज के द्वारा किया जा रहा, तो वह कर्म है, वो कर्म भी समाप्त होना अनिवार्य है, किंतु वह कर्म अन्य जो शेष कर्म है उन शेष कर्मों को निर्जरित करने के लिए एक साधन भूत है, इसलिए वह अनिवार्य है, हो रहा। इसलिए अयोग का अर्थ योगाभाव यानी आश्रवाभाव अथवा ईशत योग ये लेना चाहिए। तो ह्रस्व पांच अक्षरों का उच्चारण जहां पर हो उतने काल बराबर है, अविल अथवा कचट तप कचट तप है। अब ये ध्यान रखना एक नई बात बता रहे हैं, कचट तप इसमें कितनी मात्राएं हैं, ఏది వినా ఏదన్నా ఉచ్యతే ఇది వ్యంజనం. వ్యంజనం చార్ మాత్రకం. వ్యంజన ఆధా మాత్ర వాలా హై ఔర్ ఉస్మే అ జో హై వో ఏక్ మాత్ర వాలా హై. ఇస్ ప్రకార్ డేఢ్ హో గయా. ఔర్ డేఢ్ ఔర్ పాంచ్ వర్గ పాంచ్ డేఢ్ హై సాడే సాత్. సాడే సాత్ మాత్రే హో గయి మరే. కేసే విచ్ఛంద శాస్త్రి కంటారే కథత్ రూపాన్ని కథత్ రూపాలని ఆయా హై కి ఆయా హై ఏకమాత్రో భవేత్ సో త్రిమాత్రో దీర్ఘముచ్యతే త్రిమాత్రో కృతో జ్ఞేయో వ్యంజనం చార్థమాత్రకం. ఈ సిద్ధాంత కే అనుసార్ కచట తప తు కచట తప ఏ పాంచ అక్షరం కా ఉచ్చారణ ఆపనే కియా. యా తో ఇస్మే సాడే సాత్ మాత్రాయే హై అథవా ఇస్మే ఢాయి మాత్రా హై. ढाय मात्रा देखे बहुत अच्छी बात है. ये पकड़ की बात है. ढाय मात्रा की अपेक्षा से देखा जाए रिक्त से भी यह कम हो गई है. कैसे सब बोलते हैं वो महाराज बोलते हैं जो इसके पास हिम्मत है. हम लोग नहीं कर सकते. मैंने अंतर्मोह से को मतलब नहीं तो अल्प उच्च घटा दी दीजिए. अल रिक ये रस मात्रा है तो रस मात्रा एक एक मात्राएं हो जाती है. और व्यंजनम चार्थ मात्र कम. अब उसको व्यंजन जो है ना अर्ध मात्रा वाला होता है बजट तक. ये ऐसा बोला जाएगा तो ढाई मात्रा के अंतर्गत आ जाएगा. वैसे छंद छात्र में इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा. नहीं हो सकेगा. करें नहीं सकते. उच्चारण करने को नहीं कोई हिम्मत. इसलिए एवं त्रिविध आत्म प्रतिपादक महाधिकार मध्ये भावना विपरीतेन सम्यक दृष्टि भावना कृतम. ये आठ सूत्रों का प्रकरण जो कि तीन प्रकार के आत्मा के प्रतिपादन करने वाला महाधिकार में इच्छा दृष्टि की भावना से विपरीत सम्यक दृष्टि की भावना होती है इसको बताते हुए आठ सूत्र चले गए. अब इसके उपरांत अनंतरम सामान्य भेद भावना मुख्य संयम इत्यादि प्रक्षेपकान विहाय एक त्रिशत सूत्र पर्यंत उपसंहार रूपा चुटिका कथ्यते. अब सामान्य रूप से भेद भावना की मुख्यता को लेकर के आत्मा संयम इत्यादि को लेकर प्रक्षेप जो सूत्र है उनको छोड़ करके एक त्रिशत मैंने 31 सूत्र तक उपसंहार करने वाली है चुटिका आपके सामने आ रही है. यदि पुण्य पापादि रूप परमात्मा न होती तरी कीदृशो भवति इति प्रश्ने प्रत्युत्तरम आह. पुण्य पापादि विभाव परिणाम रूप परमात्मा नहीं होता तो कैसा होता है इस प्रश्न का इति प्रश्ने उत्तरम ददा. अपसंजमशीलतो अपादम आत्मा संयम वाला आत्मा शील वाला आत्मा तप वाला आत्मा दर्शन ज्ञान वाला आत्मा शाश्वत मोक्ष पद वाला ऐसा आत्मा को जानते रहो. संयम जो अपने आप में ही समीचीन रूप से यत्नशील है उसका नाम संयम. जो चित्तावस्था में भी रहता है चित्तावस्था में नहीं रहता ऐसी बात नहीं है. चित्तावस्था में भी वह रहता अपने आप में रममान होने रूप जो संयम है वो कभी भी छूट नहीं सकता. मार्गना अलग वस्तु है. मार्गना अलग वस्तु है. वीतरागता रूप जो चारित्र है वह चारित्र कहां तक रहता है. निश्चित बात है वह चारित्र अनंत काल तक रहेगा. तो अपने आप में ही रमन करने रूप परिणति आत्मा की जहां पर रहती है उसी को आप अपने चित्र में लाइए, इसीलिए मैंने स्वभाव उठा। अभी भी बनाया हुआ नहीं है ना, तो वर्ण है, दो वर्ण समामना है, वर्ण समामना अनंत काल परिपाट्या यहाँ पर कृत्रिम कोई नहीं है। आप वो बोलो दो वर्ण समाना है, इसको भी वो चित रहे बोले, इसके लिए वो अपने आप में चित है हमारा, कहा देखो बात ऐसी है, कृत्रिम और बहुत लोग जल्दी प्रभावित इसी बात को लेकर के आचार्य जी के स्वामी ने देवी किताब में धवला की देवी किताब में यह बात कही है कि आराम अतोर से है, चुप बैठ जाओ, क्या लिखा कुछ नहीं, बिकने बिकने की कोई बात होती नहीं, अनंत काल से उतने प्रमाण योग के पद हैं, कोटि पद कोटि शतंगादश देव कोटि, ये आज की नहीं, जब कभी भी पूछा गया तो इतने ही पद, किसने किसको बनाया, सुखबंदी भी आपने नहीं की, ये भी ध्यान रखो, पहले की सुखबंदी है वो इतने सुख पहुंची है, ये सुख भी आपने नहीं बनाया, नहीं बनाओ क्या बनाया, बनी बनी रसोई और बनाया क्या बनाया, क्या मेहनत की बताओ है मेहनत, भूखे रहने का मतलब क्या होता, कोई आज तक भूखा रहा है, बना ना बना करके नहीं बना हुआ मिलता है, बस पहले से बना जो कैसे करेंगे आप, वो तो बना हुआ है, उन्होंने क्या किया बताओ, खिचड़ी बनी है बनाया नहीं गया, खिचड़ी बनी है खिचड़ी कैसे बनी है, तो दाल और अपने चावल से बनी है, थी? वो ये कौन सा लगा रहे समझ नहीं आता, अब थोड़ी सोच लीजिए, उस क्रिएटिव जिसको बोलते हैं क्रियाओं की शक्ति की ओर तो थोड़ी सी दृष्टिपात कर लीजिए, देखिए दूध है, अब गैया से तो दूध लेते हैं आप, वो दूध है और ये दूध का पाउडर रहता है, पहले से बना हुआ है, बनाना बनाना कुछ नहीं है, वो तैयार सुव्यवस्थित अपने देश है, कृत्रिमता की ओर देखते हैं तो कृत्रिम कृत्रिम नजर आ जाता है, और जब अकृत्रिमता की ओर उसके सहज सवाल की ओर दृष्टि करते हैं तो करना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए देख तो लो आप क्या करना होता है, इसलिए तो करना रहना कुछ नहीं होता, उसको देखो, देखना भी क्या स्वभाव है, देखो क्या, इसीलिए एक भाव प्रत्यय होता, देखता हूं इसमें क्रिया है और कर्ता की ओर दिखी जाती है, देखो क्या कह रहा है, इसमें क्रिया है और कर्ता की ओर दृष्टि चलती है, कर्म अलग होता है क्रिया अलग होती है, कर्ता सामने आ जाता है और भाव भी क्या होता है, कर्ता जहां पर कौन हो स्पष्ट की न दर्शन मात्र दर्शनम, व्यक्ति मात्र ज्ञानम, चरण मात्र चारित्रम, इसमें क्या होता है, इसमें भाव प्रदान होता है, कर्ता प्रदान नहीं, इसको बोलते भाव प्रदान, जानना ठीक नहीं, आगे जानना ठीक नहीं, तुम जानते ठीक नहीं, ये ठीक नहीं जानना,
चलना और किसका तो घटाना है, इसको कर्ता को समाप्त कर दो और आप कुछ क्यों दिखते नहीं, ये चलना, ये देखना, ये जाना, ये आना, ये वो करना, इस तो जितने भी ना ना लगा करके जाना आना हो, ये भाव में अपनी आदि कृत्रिमता समाप्त है और केवल कर्ता को वगैरह कौन हो जाते हैं, केवल भाव। विदेशों में व्यापारी लोग दुकान खोलते हैं और दुकान खोल करके वो चले जाते हैं और वहां पर केवल क्या भाव, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, इतने दाम है और डाल दीजिए, जितना भाव आपने डाला उतना ही माल आपको मिलेगा, खर्च करके आकर के क्रिया प्रिय बंद करके आ जाएगा, आप उठा करके ले जाए। कौन करता, करता नहीं है, करता क्या वस्तु है, करता नहीं है, केवल जो है भाव साधन है, वो ठीक है, कोई भी आपको वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने आप चाहिए उतने आपने डाल दीजिए आपको आ जाएगा। इसी प्रकार स्टेशन वगैरह में करके ऊपर कि आप लोग अपनी वेट लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसका एक ये बनाया हुआ रहता है उनका, मान ली चौवनी ही डालना है या अठन्ने डालनी है, यदि अठन्ने डालती है तो आपका वेट आएगा, यदि और यदि मान ली कम कर लेते हैं आप वेट नहीं आएगा, ज्यादा डालने की बात है, ज्यादा डालने की वो बात है कि ईमानदारी वह भाव है, दो चौवनी डालने से भी नहीं आएगा, ये किसी ने अपव्यय नहीं करना है, कम भी नहीं, कितना समझदार है वो, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाव प्रधान बन जाए दुनिया, दुनिया भाव प्रधान बन जाए तो ये करता करता सब जितने भी गोल हो जाए बहुत अच्छी स्थिति, जिसका भाव ये है इसका भाव ये, कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही दुकान खोल सकती है, अपने आप भाव हो सकता है, अपने आप बिजली हो सकती है, अपने आप बुढ़िया हो सकती है, अपने आप सब हो सकता है, कौन से डब्बे में क्या कमी हो गई ये भी देख लेंगे, हो सकता है उसमें वो उतने भर दिया जा सकता है, हो सकता है भाव देखिए, ये होना चाहिए, तो आत्मा संयम बहुति शीलम बहुति तपस्रणम बहुति आत्मा दर्शनम बहुति शाश्वत मोक्ष पदम च बहुति आत्मा पाठांतरम सातय मुक्त करो पंथाः मार्ग अथवा सातय मुख मुख सुख करो शाश्वत सौख्य पद स्वरूप होता किम कुरन जानन अनुभवन जानता हुआ अनुभवन करता हुआ कहां पर आत्मा किसको आत्मा बहिरंग इंद्रिय संयम प्राण संयम बलेन पार में इंद्रिय संयम और प्राण संयम, प्राण संयम भी होते हैं, प्राणी संयम नहीं प्राण संयम भी है, नया शब्द आपको इंद्रिय संयम और प्राण संयम बलेन साधि साधक भावेन निश्चयन स्वशुद्धात्मने संयमना स्थिरीकरणा और निश्चय नहीं कि अभी जैसे अपने शुद्धात्मा में ही संयम करने से स्थिर करने से संयमो हो बहिरंग कार्य कारण भूते न काम क्रोधादि विवर्जन लक्षण न व्रत परिरक्षण शीले न निश्चय अभ्यंतरे शास्त्र के निर्मल अनुभव ने नीत किसको बोलते हैं बहिरंग स्वीकार्य कारण भूत तो काम क्रोध इत्यादि के रहित जागने रूप व्रत परिरक्षण रूप संयम शील से निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो स्वशुद्धात्म द्रव्य के निर्मल अनुभव के द्वारा ही शील का निष्पादन होता है, शुद्धात्मा की अनुभूति हुई वहां पर संवर हुआ वहां प्रतिक्रम हुआ वहां पर प्रायश्चित हुआ वहां आलोचना हुई वहां संयम हुआ वहां शील हुआ वहां सब आ जाता है, निश्चय में सब आ जाता है। बहिरंगी ने स्वीकार्य कारण भूत अनचनादि द्वादश तपश्चरणी ने बहिरंग से स्वीकार कारण भूत जो अनशन उमदर इत्यादि 12 प्रकार के तपश्चरण, देखो बाहरी तप के लिए 6 तप नहीं मानते हैं, 12 तप जो है ये व्यवहार की अपेक्षा से माने जाते हैं, क्योंकि भेदक करणत्वा भेदक होने के कारण निषेध के विषय ये नहीं है। निषेध के विषय तो शुद्ध उपयोग है और व्यवहार के विषय भी ही ध्यान रहता है, इसीलिए आचार्यों ने ध्यान को व्यवहार का विषय माना है, जबकि शुद्धात्मानुभूति या परम समाधि उसका निषेध का विषय माना। ध्यान में संयम है, पुरुषार्थ है, समाधि में एकमात्र जानना और देखना रूप परिणति है, इसलिए परम समाधि अपने आप में अद्भुत है। नित्यनेना ग्रद्रे समस्त परद्रव्य इच्छा निरोधेना परमात्म सत्स्वभावे प्रसपनाथ विजयनाथ तपस्तरणम्, परमात्म स्वभाव में ही प्रसपन करने से विजय प्राप्त करने से तपस्तरण माना जाता। तो शुद्धात्मा एव उपादेय, अपने शुद्धात्मा ही उपादेय है, इति रुचिकरणात् नित्य सम्यक्त्व भवति, नित्य सम्यक् भूमिका में होता। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान अनुभवन नित्य ज्ञानम, वीतराग स्वसंवेदन रूप जो ज्ञान का अनुभव है वही नित्य ज्ञान है। विद्यादि समस्त विकल्प जाल त्यागेन, विचात है राग है आदि आदि जो समस्त विकल्प जाल के त्याग से परमात्म तत्व, परमात्म तत्व में परम समृद्धि भाव परिणमनाथ, परम समृद्धि भाव के साथ परिणाम होने से मोक्ष मार्ग भवति। देखो यम तम सम सम हम धरे क्रम से क्रम क्रम हो नर से नारायण बने अनुपम अधिगम हो। अब देखो यम मैंने अहिंसा महाव्रत, सम मैंने इंद्रियों का विजय, शम मैंने कषायों का शमन, सम मैंने परम समाधि, ये इनके धारण करते समय पहले जो श्रम होता है महाव्रत धारण करना, संकल्प करना, सब छोड़ना होता है, अर्चना पहले आता, फिर बाद में जब वो छोड़ दिया तो इंद्रिय दमन सरल होता है, फिर इसके इससे भी और कम श्रम हो जाता है शम कषाय छोड़ने में, फिर इसके उपरांत कषाय छूट गई तो फिर अपने आप ही फ्लो जिसको बोलते आ गए समाधि शम सम, इसमें क्रमशः कम श्रम हो, फिर ऐसी स्थिति में क्रमशः कम श्रम हो, इसलिए हम धरे यम दम शम सम हम धरे क्रमश कम क्रम हो, फिर नरते नारायण बन, फिर तो भगवान निष्पन्न हो गए, फिर क्या होगा अनुपम अधिगम हो, केवल ज्ञान अनुपम होगा। परम समाधि की बात कब होगी शम के बाद होगी, शम कब होगा तो दम के बाद होगा, दम कब होगा यम के बाद होगा, और यम कब होगा कब होगा यम कब होगा यम तो तब होगा जबकि हम लोग गृहस्थाश्र को ये मान करके छोड़ दें, हाँ वैराग्य के बिना वह संभव, इसलिए 8 योग स्थानों में साधनों में समाधि को अंत में रखा है, जबकि ध्यान उपांत स्थान में है। यम नियम संयम धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि ध्यान और समाधि, ऐसे इसमें अंत में समाधि है पहले ध्यान, इसलिए
ध्यान तक तो हम पुरुषार्थ हो जाए, समाधि में ध्यान का एक भाग देखा पड़ता है। बहिरंग द्रव्य इंद्रिय संयमादि प्रतिपादना अभ्यंतरे स्वशुद्धात्मान वाचि रूप भाव संयमादि परिणामात परिणामनात उपादे सुख साधकत्वात आत्मा ये उपादे इति साध। क्योंकि बहिरंग में अनेक प्रकार के द्रव्य इंद्रिय संयमादि का प्रतिपादन किया जाता है, किंतु अभ्यंतर में शुद्धात्मान वाचि रूप जो भाव संयम है वही एकमात्र उपादे है, वही मुक्त सुख का साधन है, वही एकमात्र आत्मा उपाधि है। प्रत्याख्यानम नानम एव प्रत्याख्यानम नानम एव संयम नानम एव संवर नानम एव परिकमन नानम एव सार्थ ज्ञानी ज्ञान ज्ञानी ज्ञान ज्ञान तो आत्मा। इसलिए आत्मा को छोड़ करके दर्शन ज्ञान चारित्र और कोई वस्तु नहीं। स्वशुद्धात्म संविच्ची को छोड़ करके निश्चय से अन्य दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस अभिप्राय को बताने वाला आज का सूत्र आ रहा है। आत्मा को छोड़ करके ये कोई वस्तु नहीं, इसलिए आत्मा को पकड़ो, एक को पकड़ो तो सब आ जाएगा, उसको पकड़ो इसको पकड़ो इससे इस कार्य में जुटो नहीं, एकमात्र आत्मा को पकड़ो, दर्शन भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, चारित्र भी आएगा, तप भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा। इसके साथ साथ और आत्मा को पकड़ो तो क्या, आत्मा के स्वभाव को पकड़ो तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा। आत्मा का स्वभाव क्या है समझा, जानना चुप बैठे रहो, कहा मिल जाएगा आत्मा, बिल्कुल आत्मा मिल जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र मिल जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान को देखो मोक्षे पावन पहले कहा जाता था कि भगवान मिल जाओ चाहिए, देखो उन बच्चों को लड्डू पहले मिलेंगे जो भगवान बन जाए, ध्यान रखना भगवान बनना तो भगवान बनना, बीच में तुम देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जिसका देखेगा तो नंबर कट जाएगा उसका, इस बात है भगवान देखते हैं बीच में बैठ। अब तीन प्रकार से देखना होता, काय से देखना, वचन से देखना और मन से देखना। देखो ध्यान रखना, भगवान मन से भी नहीं देखते, वचन से भी नहीं देखते और काय से भी नहीं देखते, सही सही बोलने गए ना, तभी मिलेगा। इसी प्रकार मोक्ष सुख रूपी लड्डू उस साधक के लिए निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित है, लेकिन उसको मन से भी वचन से भी काय से भी पर वस्तु को नहीं देखना, नहीं देखने के भाव रखना। कुछ कितने देर के लिए बैठे, अंतर्मोट पर्याप्त मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा या नहीं इसको देखने के लिए आंख खोलने की आवश्यकता नहीं, तीन लोग मिल जाता है ये तुम्हें देखने की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ खोलो नहीं आंख, बस इतने आत्मा को देखोगे दर्शन ज्ञान चारित्र मिले। और आत्मा देख रहे कैसे, आत्मा का स्वभाव राजनीत नहीं करना है, मैं हूं ये उनकी की कोई आवश्यकता नहीं, किसको सुना रहे हो मैं हूं, आत्म प्रत्यय तो है आपको, विश्वास नहीं क्या मैं हूं, मैं ऐसा हूं, इधर उधर की बातें मत करो। सैनिक राजा की जब विवाह होना था किसके साथ खेलना के साथ, तो पहले प्रशिक्षण दिया गया, ये प्रशिक्षण दिया गया, वहां के लोग आने लगे हमारे यहाँ रात में नहीं खाते, हम पानी छान करके हम तो कम ही पानी खाते, मिलिया हम वो आलू नहीं खाते, हम गाजर नहीं खाते, हम मूली नहीं खाते, वो नहीं खाते, क्यों क्यों कहा जा रहा? नहीं, मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ परंपरा से इस तरह से, तो उन्होंने समझ लिया कि ये जो प्रशिक्षण अभी अभी दिया जा रहा है, ये तो परंपरा से जब चलता है, जिन्हें की ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए जो आप चेलना आ रही है, इसलिए आप तो भैया करो कुछ ना कुछ, तो मैं तो चेलना है तो पहले लग जाएगी भैया, यहाँ तो रात्रि भोजन चलता है, हम तो आलू बटा भी चल रहे हैं, वो भी मल रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने यहाँ तो सपने में भी बटा नहीं आता, इसकी बात है। ये इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा कि आत्म प्रत्यय नहीं है क्या आप लोगों को, जब मैं हूं कह दिया, इसको बता रहे हो, भगवान को बता रहे हो। हाँ, इसलिए जिसको अभी तक ज्ञात नहीं है उसी के लिए इस प्रकार बताना पड़ता है, ये है, ये है, ये है, कुछ नहीं। जैसी जैसी प्रौढ़ता आ जाती है आत्मा में, वैसे वैसे मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इसमें भी उसको घाटा सा नजर लगने लग जाता है, इसमें भी हमारा घाटा। शांत बैठे, जितनी क्रियाएं समाप्त होगी आत्मा की उतनी ही शांति मिलेगी और एनर्जी शक्ति जो है और खुल रहेगी। मैं हूं मैं हूं मैं हूं इस प्रकार करने से शक्ति कम हो जाएगी। हाँ, नींद लगना जाए ऐसा पीछे से मैं हूं मैं हूं मैं हूं कहते जाओ, कहीं प्रमाद की ओर जान जा, इस सब पीछे से अनिवार्य है। वस्तु तो है, जो जागृत रहता उसके लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं, बैठे रहना। इतना सस्ता है ये कार्य और इतना सुलभ और इतना सरल है, अब तुम लोग मेहनत ही करना चाहते तो पसीना पसीना बहाओ, तो ये आदत पड़ी हुई आपको, पसीना बहाना पड़ता तो सब कहीं मिलता है, क्योंकि हम जो कमी सूरा तो कमी सूरा बस ये रख रखा है। दुकान में मेहनत जैसे करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जो करना होता है, जो करना नहीं है और एक करना नहीं। हाँ, यहाँ पर न्यूज की बात है, चौकन का आती है, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये चौकन न हो गया, अब यहाँ तो भय ही नहीं है, तो करना नहीं है। जो करने का क्या है, चारों ओर कान है, कोई तो सावधानी बाद में आ गया। जो करने का अर्थ ये है कि चारों तरफ कान रखना, इसका नाम चौकन्ना होता है, मैंने सावधान है, सावधान चौकन्न बैठो, चौकन्न बैठो, चौकन्न को बैठो बात ये है, इधर से सुनो इधर क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, चारों तरफ से जो है ना चौकन्न हो जाओ, तब कर्मों का समर्थन। अब बाहर के भय की अपेक्षा जी तो रक्षा की आवश्यकता, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, चौकन्ने की क्या आवश्यकता, भैया चोर आ जा आने जाए, चौकन्न बैठे रहो, अच्छा ठीक है, कितने भी बैठे रहो वो तो कर ही लेगा अपने काम, अपने पास कुछ है ही नहीं तो चौकन्ने की क्या आवश्यकता। अच्छे को बात है, बात ऐसे है कि बाहरी चीज को तो कोई ले जा सकता है, हमारे वो चीज तो जा ही नहीं सकते, हम देखो दुर्गा बताया किसे, सोना किसने चुरा लिया, सोने को कोई चुरा नहीं सकता, क्या कहा, सोने को कोई चुरा ही नहीं सकता, क्योंकि उस सोने का जो गुण है उस गुण को कोई भी नहीं ले जा सकता। सुनो वही की तो बात है, वही कुछ जाना है अपने को, सोने को कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि सोना किसका नाम है, गीलापन मृदुपन भारीपन, इसको तो कोई चुरा नहीं सकता, और उसको कोई नहीं चुरा सकता तो फिर उससे डरने की क्या आवश्यकता, कहीं भी पटक दो सोने को वह चोना जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार आत्मा, आत्मा कौन है, आत्मा कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान उसका धन है, वह धन कभी भी आत्मा से पृथक हो नहीं सकता, कोई भी नहीं चुरा सकता। ये जब निश्चय हो जाता, प्रत्यय हो जाता, फिर वह हूं मैं हूं मैं हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, ये सब बातें जो है ना उस व्यक्ति को कहा गया है, ये अभी जो बच्चे ज्यादा निष्कुल नहीं है, वो उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो व्यक्ति इस प्रकार अभी अध्यस्त नहीं हुआ है। नहीं समझ, तो आपने स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि तुम अपने अलावा दूसरे में कुछ संबंध जोड़ना चाह रहे हैं, चला जाता है अगर बना हुआ उसका। कहा ले जाता नहीं, ले जाता नहीं, वो आ जाते हैं अपने ध्यान कहीं ले जाना नहीं होता, ध्यान में आ जाता है, ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान का स्वभाव है। कुछ लोग ज्ञान और देह के संबंध से डर जाते हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ज्ञान और देह का संबंध रहता है उससे नहीं डरना चाहिए, ये संबंध है महाराज। वही वही बात याद आ रही है, याद आने दीजिए, कहीं मन को उधर ले जाकर के लिए याद कर रहे हो क्या? ऐसे तो नहीं करते, तो नहीं चाहते हैं और वो आता तो ठीक है, आ जाए कोई बात। लेकिन आप उस और मन जो है ले जाए नहीं, चला जाता है, आने दीजिए, वो मन में आता है, आने दीजिए, स्वभाव का स्वभाव के लिए क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार धीरे धीरे दुनिया की बातें याद आएंगी, केवल ज्ञान होने के उपरांत तो पूरी आ जाएंगे, अब क्या करोगे? उसी प्रकार आप कभी मत करो, आने दीजिए, महाराज जी पक्ष आदमी खान से पक्ष आते हैं, रात के द्वारा जो पक्ष हाँ बनाए हो तो मत गुड़ हो तो जीत, गुड़ रखो नहीं,